لیکن اپنے سننے والوں سے
مہمان ہمارے ساتھ ہیں.
ہمارا آج کا
مزاق معمول خبروں سے
آپ کے ساتھ ہے. اگلے
بات کر رہے ہیں اس بارے
میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ.
وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ سماعت فرمائیے. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر وی او اے اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آفتاب بورکا.
بہت بہت شکریہ اکبر چودھری، آپ نے ہمیں موقع دیا. بہت مشکل سے آپ ہاتھ میں آئے ہیں. کیا کر رہے ہیں آج کل، کیسا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟
السلام علیکم آفتاب، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کے لیے.
آپ بزی شخص ہیں، بہت کام کرتے ہیں. آپ کا آئی واز واچنگ سم آف یور ویڈیوز، کافی مزیدار آپ کا ہیومر ہوتا ہے. میں اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا، پاکستان میں اسپیشلی پالیٹکس اور سوشل ایشوز پہ آپ کامیڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں مواد کی کمی نہیں ہے آپ کے لیے. بٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کامیڈی کے حوالے سے، تنقید کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایم شیور اس سے ناخوش بھی ہوتے ہوں گے، تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ میجر کر پائے ہیں کہ جس آڈینس کو آپ سرو کرتے ہیں اس کی لمٹ کیا ہے، کس لمٹ تک آپ جا سکتے ہیں یا کس تک نہیں جا سکتے؟
جی جی بالکل بالکل. میں تھوڑا اس کے پیچھے کانٹیکسٹ دے کے آنسر کرنا چاہوں گا. میں اسینشلی اسٹینڈ اپ کمیڈین ہوں. اس پینڈیمک سے پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لائیو پرفارمنس پریفر کرتا تھا میں، اور لائیو پرفارمنس میں یہ ہے کہ ایون تو پاکستان میں جیسے امریکہ میں بہت اسٹیبلشڈ اسٹینڈ اپ کامیڈی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کراچی میں ہم نے تھوڑا بہت ایک اچھا اس کا سین بنا لیا. تو اب لائیو پرفارمنس میں آئی وڈ سے کہ اتنے زیادہ فلٹرز نہیں ہیں، اتنے زیادہ لمٹس نہیں ہیں، کیونکہ وہ یو نو تھوڑی دیر کے لیے وہ محفل ایگزسٹ کرتی ہے اور پھر برخاست ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب انٹرنیٹ جو ہے وہ پرماننٹ ریکارڈ ہے، تو پینڈیمک جب آیا ظاہر ہے ہم لوگ لائیو شوز کرنا نہیں کر پائے، تو اب تھا کہ جی کیا کریں. تو میں نے ایک ایونیو تلاش کیا کہ میرے جو اسٹینڈ اپ کمیڈینز والے اسکل ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور میں ایک زمانے سے ویڈیو بنا رہا تھا، کورونا کی وجہ سے میں نے پراپرلی اس کو پرسو کیا اور کر کے ہی میں سیکھ رہا ہوں ابھی بھی آئی وڈ سے کہ میں، لیکن ابھی جو ہے میں ہر ویڈیو کے ساتھ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں. تو لانگ آنسر کوسچن، میں نے یہ ابھی نوٹس کیا ہے کہ جیسے پالیٹکس پہ، سیاسی جو موجودہ حکومت ہے اس پہ اگر آپ زیادہ تنقید کریں تو لوگ جو ہیں ایونچولی بہت برا مان جاتے ہیں. مذہب ظاہر ہے اور بھی مختلف چیزیں ہیں ان پہ بات کرنا جو ہے، عورت مارچ ایک اور اگزامپل ہے، اس پہ اگر زیادہ بات کی جائے تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے مطلب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. تو میں اب تھوڑا نا ایک سمجھ لیں کہ ایٹ اے کراس روڈز ہوں کہ اسینشلی میں ایک انٹرٹینر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، تو کیا میں صرف انٹرٹین ہی کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں ایک اس کے ساتھ میسج بھی دینا چاہتا ہوں؟ تو یہ ایک چیز ہے جو میں اپنے لیے آج کل سوچ رہا ہوں کہ میں کدھر سٹینڈ کرتا ہوں.
ڈائریکٹلی آپ کے سوشل میڈیا پہ فینس کی طرف سے آپ کو آئی ڈونٹ نو کہ آپ انٹریکٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں، لوگ اگر کرتے ہیں اور وہاں پہ تنقید یا انیسیسری قسم کی اگر کوئی ہیٹ یا ٹرولنگ فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں
آپ؟ شروع میں آفتاب بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جینونلی تھوڑا بودر کرتا تھا. میں تھوڑا، میں نے نوٹس بھی کیا میرا موڈ خراب ہو رہا تھا، میں برا فیل کر رہا تھا. تو شروع میں بالکل ایسا تھا کہ اٹ وڈ ایکچولی مطلب مجھے اٹ وڈ گیٹ ٹو می، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک اندازہ ہو گیا. آس پاس کے جو کالیگز ہیں، علی گل بڑے اچھے دوست ہیں میرے، انہوں نے بھی مجھے سمجھایا اور بھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ یو نو یہ ہے پارٹ آف دا جاب ہے. جیسے مطلب سمجھ لیں میں جب ایک زمانے میں انجینئر ہوتا تھا تو کام کرتے ہوئے پسینہ آتا ہے، یہ پارٹ آف دا جاب ہے. تو اسی طرح میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں تنقید، ہیٹ، ٹرولنگ وغیرہ تو ہوگی اور وہ پارٹ آف دا جاب ہے، تو اس کو دل پہ نہیں لینا. تو ناؤ آئی وڈ سے کہ مجھے اتنی بری نہیں لگتی چیزیں. اور ایک اور اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ریسپیکٹفلی انگیج بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے، اور میں اور اس سے میری اصلاح بھی ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ویڈیوز میں، کچھ اسٹینڈ اپ کامیڈی جوکس کی ویڈیوز میں میں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شاید استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اس لفظ سے کسی ایک طبقے کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے لکھا، انہوں نے مجھے سمجھایا، और उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार भी हूँ, क्योंकि इससे मैंने जैसे मैंने कहा कि सीखना चाहता हूँ तो मैं सीखा, और अब वो मैं यू नो एक होता है ना कि सेंसिटिविटीज इवॉल्व कर जाती हैं, तो मेरे साथ भी यही चल रहा है।
यू आर राइट। अब मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया पे आई थिंक बजाहिर लोगों को तनकीद लगती है कि किसी इशू पे बहुत है, लेकिन आई थिंक आई डोंट नो मे बी आई एम रॉन्ग एंड यू टेल मी आपका क्या एक्सपीरियंस है। मुझे तो लगता है कि अक्सर औकात जब लोग आप पे तनकीद करते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आते हैं अपने ओपिनियन में, वो खुद भी शायद अपने ओपिनियन के बारे में इतने सीरियस नहीं होते, बैठे होते हैं कहीं भी बैठे होते, कोई वीडियो देख ली, फॉरन कॉमेंट कर लिया या पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बन गया, पांच मिनट के बाद उन्हें खुद भी याद नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा है शायद, तो उल्टा जिस पे तनकीद होती है वो बेचारा शायद लेके बैठ सकता है कि यार मेरे लिए क्या कह दिया ये वो, बट जो कहने वाले हैं शायद वो भी पता नहीं इतने सीरियस, बिकॉज इट्स लाइक वेरी इजी टू डू इट।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया के साथ हर किसी को आवाज मिल गई है, और आई वुड से यू नो 90% ऑफ द टाइम मे बी ये आपके लिए कोई एक नेगेटिव कॉमेंट अगर लिख देता है वो एक मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्राई फॉर अटेंशन, और अगर आप बंदे को एंगेज कर लें अटेंशन दे दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक जो एक एक टेंशन है वो डिफ्यूज हो जाती है, वो मसला नहीं बनता, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आपने उनसे बात की, आपने उनको एक्नॉलेज किया, तो वो जो है ना आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो इसमें बिल्कुल खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, एंड देन दैट्स फाइन, वो फैन भी अक्सर
मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप कोई वीडियो कर रहे होते हैं, कोई मतलब अजीब होता है ना, बात किसी डायरेक्शन में जारी होती है, कोई आके पता नहीं कौन से इशू पे तनकीद कर रहा होता है, तो आपके चाहने वाले जो है बीच में वो जो है ना आके उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, और आप मतलब तो आप वो देख के आपको मजा आ रहा होता है कि नहीं यार लोग उनको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई बड़ा सेटिस्फाई आपके जो फॉलोअर्स हैं आपके दिफा के लिए वो तैयार बैठे हैं।
जहां तक ह्यूमर का ताल्लुक है, तुम कैसे जनरली क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब न्यूज को फॉलो करते हो और उसके बाद अपना मटेरियल पिक करते हो, ये क्या है जनरली थॉट प्रोसेस आपका स्केचेस को बिल्ड करने में क्या होता है?
थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे यू नो मंडे टू मंडे में अगर एक साइकिल ले लूं, जैसे मंडे को मैंने वीडियो रिलीज किया, मंडे टिल द नेक्स्ट मंडे मैं जितनी भी मुझे सोशल मीडिया पे मेरे नजदीक अजीब आइटम जो देखते हैं, फनी जो होते हैं, स्ट्रेंज न्यूज, थिंग्स दैट आर वायरल ट्रेंडिंग, ये वो मैं उनको ना जमा करता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट मंडे वाले दिन मैं जब दिन अपना शुरू करता हूँ तो मैं उनमें से थोड़ी छांटी करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि बेस्ट जो है 4 से 5 मिनट की ड्यूरेशन में मैं कौन सी फिट कर सकता हूँ। फिर जो है एक चीज जो मुझे लगता है मेरे फॉलोअर्स भी नोटिस करते हैं, जो मैं शायद दूसरे इसी टाइप के काम करने वालों से डिफरेंट करता हूँ, वो है कि मेरी कोशिश रहती है एक सिंगल नैरेटिव में तमाम चीजों को कनेक्ट किया जाए, तो ये एक स्किल है जो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी से मैंने सीखा, और ये सर्टेनली मैं ये फील भी करता हूँ कि मेरे पास ये एक एडवांटेज है, क्योंकि लोगों को लाइव हंसाना उनसे पैसे लेके ना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। तो ऑन द अदर हैंड ये भी दिस ऑल्सो हैज इट्स सेट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता ये बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, तो फिर ये सारे तमाम न्यूज पीसेस वगैरह जमा करके फिर मेरा एक्सपीरियंस मॉर्निंग शो होस्ट करने में भी रहा है, तो एक साल मोर मैंने किया, इसकी वजह से मेरी उर्दू भी बड़ी बेहतर हुई, पहले मैं अंग्रेजी में वीडियोज करता था, क्योंकि मैं उर्दू बेहतर सकता हूँ, उर्दू बेहतर समझ सकता हूँ, मुझे एक अंदाजा है कि मेजोरिटी पाकिस्तानी आवाम जो है किस तरह का कॉन्टेंट सुनना चाहती है, तो इन तमाम चीजों के बिना पर जो है मैं एक वीक में वीडियो तैयार करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा सपोर्ट किया लोगों ने, एक साल ही हुआ है अभी, आई वुड से मैंने तकरीबन 42 हो गए, तो अबाउट 38 वीडियोज बनाई हैं इस रेंटी रोने सीरीज की, और उसके अलावा भी कुछ बनाई है, तो वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी लकी टू हैव।
या दैट्स गुड, या इट्स अ बिग, बहुत बड़ी अकॉम्प्लिश है, श्योर बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो लोगों को हंसाते हैं, लेकिन खुद हंसने के लिए क्या किससे इंस्पायर होते हैं, किसको देखते हैं, क्या करते हैं?
अफजा भाई मैं बड़ा लकी महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि टर्न्स आउट कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है ना वो कराची में सारे कमेडियंस हैं, ऑल ऑफ देम।
एग्जैक्टली, ओके।
हम लोग साथ में परफॉर्म भी करते हैं, और अक्सर हमारा एक इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी का ट्रूप भी है लॉल वाले, तो हम लोग साथ परफॉर्म करते हैं, हम लोग शोज भी करते हैं साथ, और हमारी बैठक भी साथ होती है, तो वेरी वेरी लकी टू हैव दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर आई वुड से अमंग्स द फनीएस्ट पीपल इन पाकिस्तान. तो जब भी इनके साथ में बैठता हूँ हंस हंस के हालत खराब हो जाती है, बहुत मजा आता है. तो मेरे लिए जो डाउन टाइम है इस महफिल में अक्सर मैं ही सबसे ज्यादा खामोश होता हूँ और मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, मुझे हंसी आ रही होती है.
तो आपकी इंस्पिरेशन आपको वहां से मिलती है?
बिल्कुल, अक्सर मुझे यहाँ से मिलती है. और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की एक समझ लें एक लाइफ स्टाइल ये होता है कि ऑब्जर्वेशन 24/7 चल ही रही होती है. तो
ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैं उससे आपको पूछना चाह रहा था, आप कराची में रहते हैं ज्यादातर, आपका वहां इंटरेक्शन होता है डे टू डे एक्टिविटीज में लोगों को, जब आप देखते हैं माशरे में, तो सबसे एक कॉमेडियन का काम होता है बेसिकली इनकंसिस्टेंसीज को ढूंढना, हिपोक्रेसीज को माशरे में ढूंढना, या आयरनीज होती हैं. तो कराची में डे टू डे लाइफ में सबसे सबसे बड़ी आयरनी आपको क्या नजर आती है, सबसे ज्यादा फनी चीजें क्या नजर आती हैं आपको?
हाँ ये तो एक मतलब इट्स अनएंडिंग लिस्ट. एक चीज जो मुझे बड़ी फनी लगती है वो ये है कि यू नो कराची के लोग सड़क पे आप निकल जाएं तो हर कोई जल्दी में होता है, लेकिन कोई भी किसी भी जगह वक्त पे नहीं पहुंचता. ये मुझे एक बड़ी ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसी लगती है.
Right.
आप क्यों होती है, इट्स नॉट लाइक यू गोना रीच ऑन टाइम. फिर मुझे एक बड़ा यू नो देयर इज दिस क्लास डिवाइड ओवर हियर, बर्गर और मेला. तो मुझे पर्सनली इन दोनों तबकों में बड़ा एक्सपोजर रहा है, तो मैं ये चीज पर्सनली बड़ी इंजॉय करता हूँ. यू नो द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ बर्गर्स और फिर मेलों की एक अलग है, और मैं अक्सर इनको कंबाइन करने की भी कोशिश करता हूँ. तो मुझे ये पर्सनली बहुत इंजॉयबल लगता है. तो ये है, ये कुछ चीज है.
नहीं ये बड़ी अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन बताई यार, ये टाइम टाइम का मसला है. आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स टिपिकल टू अ पर्टिकुलर एरिया या आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उसका इन्फ्लुएंस लोगों को पे आ जाता है क्या होता है, बट ये प्रॉब्लम तो है. ये तो मैं भी वहां पे रहा हूँ, मैंने देखा है बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में.
बिल्कुल बिल्कुल. आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी. मैं अपने मास्टर्स के लिए फ्लोरिडा में 2 साल मैंने गुजारे.
ओह अच्छा.
वहां पे जब मैं पहुंचा तो ना मैं होता है ना शुरू में टर्न के शुरू में आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, कैंपस एक्टिविटीज ये वो, तो मैं हर जगह जाने की कोशिश करता था. और हर जगह क्योंकि आदत यही है कि 3-4-5 मिनट देर हो ही जाती थी, और जब भी मैं जाता था मैं देखता था कि ये जो महफिल है ना जिस टाइम पे लिखा हुआ था उसी टाइम पे शुरू हो रही है. फिर एक दिन एक PSA पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का कोई इवेंट था, तो मैं क्या कि भाई अब तो बहुत हो गया टाइम पे जाता हूँ. सिर्फ एक वो जगह जहां मैं टाइम पे पहुंचा और वो ही था जो टाइम पे शुरू नहीं हुआ. ये हमारे ब्लड में है, इलाके का नहीं है, ये हमारी जीन्स में है.
राइट. बस एक ही इवेंट जहाँ पे आपको आपने सोचा कि टाइम पे पहुंचे वही पे नहीं हुआ टाइम पे. दैट्स फनी.
हमारा इवेंट
I didn't know. It's interesting to know कि आप यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ US में आए और आप पाकिस्तान, I'm sure आपने यहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम ऑब्जर्व किया हो. कितना अर्सा आप यहाँ पे रहे?
मैं 2 साल गुजारे थे 2015 से 2017 गेन्सविल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से.
मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि वहां में और यहाँ में सबसे बड़ा फर्क, एक फनी फर्क अगर आप कोई ऑब्जर्व करें तो क्या नजर आया पाकिस्तानी माशरे में और यहाँ अमेरिका में रहने के बाद?
फनी फर्क इस पे मैंने की काफी कॉमेडी. मैं एक्चुअली बड़ा एंजॉय भी करता था फ्लोरिडा, अटलांटा, शिकागो वगैरह में परफॉर्म भी करता था मैं. तो एक चीज जो ये थी कि यू नो फ्लोरिडा को हम परसीव करते हैं अमेरिका में एज यू नो लाइक द नाजमाबाद ऑफ अमेरिका.
अच्छा.
बड़ा अम्यूजिंग. उस जमाने में ये ट्रंप का टाइम, रेसिज्म वगैरह चल रहा था, तो मैं इस तरह की भी कॉमेडी करता था कि ना मैं थोड़ा घबराता हूँ लोगों को कि मैं क्या बताऊँ कि मैं मुसलमान हूँ या कि मैं फ्लोरिडा से हूँ. तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट लगता था. और डे टू डे में यू नो वो वाली चीज है, जब भी मैं पाकिस्तान वापस आता था उस टाइम में तो एक चीज मैं नोटिस करता था कि हम यू नो बिजली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं अमेरिका में.
पानी
मैं जा रहता था, छोटा सा शहर था वो, गेन्सविल स्टूडेंट कॉलेज टाउन था, तो वहां शायद आबादी 1 लाख की थी और वहां भी ना लोग मैं देखता था घबराते थे कि भाई ये तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. और मुझे हंसी आती थी इस पे कि यार मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरे ख्याल से 23 या 25 मिलियन का शहर है, वहां होता है ट्रैफिक, ये क्या ट्रैफिक.
Exactly.
आपको सिग्नल पे रुकना पड़ा.
Right.
तो इट्स अ गुड टाइम, सर्टेनली अ वेरी एंजॉयबल टाइम.
सो गोइंग फॉरवर्ड आप जो काम कर रहे हैं लाइक आई सेड वेरी सक्सेसफुली और एक आर्ट से रिलेटेड है, एक अपना पैशन और फन अपनी जगह पे होता है, बट ओवरऑल इफ यू आस्क योरसेल्फ अपने आप को कि इस सारे मामले से इवेंचुअली हर किसी के एक पर्सनल गोल्स होते हैं, मोटिवेशन होती है, आपकी मोटिवेशन क्या है? इवेंचुअली कुछ अचीव करना चाहते हैं या एक फ्री फ्लो है कि बस जैसे जैसे आइडियाज होते हैं करते रहे, या कोई 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 है मकसद जिसको आप इससे अचीव करना चाहते हैं सारे मामले से?
ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं ना इतना फ्यूचर में नहीं सोचता. जो कुछ लोग होते हैं ना, 5 साल 10 साल वाले गोल होते हैं, इतना मैं आगे नहीं सोचता. मुझे लगता है कि यू नो, गो विद द फ्लो, उस टाइप का मैं इंसान हूँ. बट ये जरूर है कि जो विजन एक है या एक लॉन्ग टर्म गोल कह लें, वो स्टैंड अप कॉमेडी से ही जुड़ा हुआ है. वीडियोज ऑब्वियसली बड़ा मजा आता है, इसकी एक सर्टन एडवांटेजेस हैं कि हम यू नो घर बैठे लाखों लोग को रीच कर सकते हैं. वेयरएज एक लाइव शो में आप मैक्सिमम 200-300 लोग, जितनी भी कैपेसिटी है वेन्यू की, उनको ही रीच कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंजॉयबल काम है. तो लॉन्ग टर्म विजन मेरा ये है कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को ऐसे सिनर्जाइज किया जाए कि मैं जैसे अमेरिका आके फॉर एग्जांपल टूर करना चाहता हूँ. इरादा भी था एक्चुअली, उसी टाइम पे कोरोना आके हिट हुआ. मैं यही चाहता हूँ कि ओवरऑल दुनिया में अलग अलग जगह जाऊं, वहां जाके लोगों को हंसाऊं. मुझे लगता है कि हर किसी का, एवरीबॉडी हैज अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड, एंड फॉर मी इट इज दिस कि मैं थोड़ा बहुत यू नो, यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ एंड लिसन टू समथिंग, और थोड़ा आप इंजॉय करके फिर चले जाते हैं. तो मैं ये सर्विस करना चाहता हूँ.
चले यार, गुड लक विद एवरीथिंग. और आप अमेरिका में हैं तो होपफुली जरूर आपसे मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
आप VOA उर्दू के पॉडकास्ट की ताज़ा किस्तें सुनने के लिए इसे iTunes, Google पॉडकास्ट और Spotify ऐप पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.